वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान की जो वृंदावन लीला है उसके बारे में। तो हम सब परिचित हैं कि जो जन्माष्टमी उत्सव है वो बहुत ही करीब है। तो भगवान भगवत गीता में चौथे अध्याय में कहते हैं अपने जन्म के बारे में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। तो भगवत गीता ये ऐसा महान शास्त्र है जिसको सभी प्रकार के आचार्यों ने और सभी प्रकार के लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि भगवत गीता भगवान की जो दिव्य शिक्षा है उससे भरा हुआ है। और भगवान भगवत गीता में स्थापित करते हैं कि उनसे श्रेष्ठ और कोई परम सत्य नहीं है। मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया, हे धनंजय मुझसे बढ़कर कुछ और परम सत्य नहीं है। और वास्तव में सारे शास्त्रों का वेदों का आदि का अध्ययन करने का अर्थ है परम भगवान कृष्ण को क्या करना, जानना। वेदेच सर्वे अहम एव वेद्य, वेदों का अध्ययन करने का मतलब है कि भगवान को जानना, भगवान को समझना। तो भगवान को जानना हो भगवान को समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं, कई उपाय हैं। उसमें से एक है भगवान को जानने के लिए भगवान से ही हमें समझना चाहिए। तो भगवान जैसे हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके पत्नी को हम पूछ सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में, और दूसरा है वो व्यक्ति स्वयं ही बोले अपने बारे में तो हम बिल्कुल सटीक चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भगवत गीता के द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरा जो इस संसार में आना या इस संसार में जन्म ग्रहण करना और इस संसार में कर्म या कई सारे कार्यकलाप करना वो साधारण नहीं है, वो कैसा है, दिव्य है। दिव्य मीन्स जो प्रकृति के गुणों से परे है और भौतिक जो बंधन आदि है उससे परे है। तो ऐसे भगवान अपने जन्म के बारे में अर्जुन को वर्णन करते हैं, और यदि हमारे बारे में हम सोचें तो हमारा बिल्कुल इससे क्या है, विपरीत है। जन्म कर्म च दिव्य है और हमारा जन्म और कर्म क्या है, इस संसार में कष्ट और बंधन बढ़ाने वाला है। भगवान जन्म ग्रहण करते हैं अपनी इच्छा से, हम जन्म ग्रहण करते हैं प्रकृति के बंधन के कारण और हमारी भौतिक भोग करने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो एक सर्वसाधारण व्यक्ति के भांति नहीं है। सर्वसाधारण व्यक्ति जन्म लेता है और फिर बढ़ता है, बूढ़ा हो जाता है, कई प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है और अंत में क्या होता है, मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का जो प्राकट्य है वो सूर्य के समान है। किसके समान? सूर्य के समान। ऐसा नहीं है कि भगवान ने जन्म लिया और भगवान मर गए। भगवान जैसे सूर्य है, अभी रात्रि होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी सूर्य मर गया है। नहीं, सूर्य का अस्तित्व क्या है, हमेशा के लिए है। सूर्य अभी उदित हुआ है और सूर्य अभी क्या हो गया है, अस्त हो गया है। प्रकट होना और अप्रकट होना हमारा वैसा नहीं है। हम इस संसार में जन्म लेते हैं और हम इस संसार में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म को जानना होगा। और जो व्यक्ति उचित रूप से जानता है वो इस संसार में संसार से मुक्त होने का अधिकार प्राप्त करता है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं और हमें शास्त्र प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं भगवान की कार्यकलापों को। तो अब ये जो जन्माष्टमी है ये वास्तव में बहुत बड़ी भगवान की एक देन है, एक ऐसा उत्सव जिसमें जिसके द्वारा हम अपना जो संबंध है भगवान से और प्रगाढ़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और प्रगाढ़, गाढ़ा कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में संबंध से ही सुख की अनुभूति होती है। किससे होती है? संबंध। अब अकेले अकेले रहो और आपके पास संसार के सारे बेस्ट गैजेट्स हो सकते हैं लेकिन आप सुख की अनुभूति नहीं करोगे जब तक आप क्या नहीं हो, आपके पास संबंध नहीं हो। इसलिए तो व्यक्ति परिवार बढ़ाता है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिलेटिव्स आदि हैं, क्योंकि जब उसका संबंध आदि बढ़ता है, संबंध स्थापित होता है तो वह व्यक्ति कुछ आनंद और सुख की अनुभूति करता है। तो लेकिन इस संसार में हम चाहे किसी के साथ भी कितना ही परफेक्ट संबंध क्यों ना बनाए लेकिन उससे हमें शाश्वत सुख की अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शास्त्रों में कहते हैं कि वास्तव में हमें किसी से संबंध बनाना ही है या अपना संबंध दृढ़ करना ही है तो वो किसके साथ करना चाहिए? कृष्ण के साथ करना चाहिए। और उसी की शिक्षा वास्तव में श्रीमद् भागवतम में है। भागवतम क्या है ये हमें बताता है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से व्यक्ति क्या अनुभूति करता है। बच्चों को एक जगह बिठा दो, उनको पीछे ले जाओ या किसी एक जगह उनको बिठा दीजिए बच्चों को, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पास समय कम है, वैसे आयु सबकी बढ़ी हुई है और वैसे हम कुछ मिनटों के लिए यहाँ हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संबंध स्थापित करना है तो वो किससे करना चाहिए? भगवान कृष्ण से। और वास्तव में भागवतम का ये सार है, भागवतम का सार है कि व्यक्ति में कितनी ही कमियां क्यों ना हो लेकिन उन सारी कमियों को होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति भगवान से संबंध स्थापित करता है तो उसका जो जीवन है वो सफल या धन्य माना जाता है। और इसलिए भगवान अवतरित होते हैं इस संसार में और ये उत्सव हमें प्रदान करते हैं जन्माष्टमी का, जिसके द्वारा हमारा जो संबंध है हम पुनः भगवान से स्थापित कर सकते हैं। और किसके माध्यम से स्थापित कर सकते हैं? भक्ति योगा के माध्यम से। योग का अर्थ यही है, योग का अर्थ क्या है? जुड़ना, कनेक्ट होना। तो ये माध्यम है हमें कि जिसके द्वारा हम भगवान से हमारा जो टूटा हुआ संबंध है, बिखरा हुआ संबंध है, वो पुनः स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए व्यक्ति को एक चीज से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की भावना या इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को सर्वप्रथम एक कार्य करना होगा, और वो कौन सा कार्य है? श्रवण। भगवान के बारे में, अपने जीवन के बारे में और उसको सुनना होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं, जब हम भगवान के बारे में और अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सुनते हैं, तो धीरे 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 हमारा जो संबंध है भगवान के साथ स्थापित होता है या प्रगाढ़ हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कार से जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में वो व्यक्ति प्रभुपाद कहते हैं कि अपनी याददाश्त को बैठता है, हॉस्पिटल में वो एडमिट किया जाता है, और वो उसकी पत्नी भी उसके सामने आए तो आके ऐसे बड़े करके देखता है, कोई इमोशंस नहीं, कोई पहचान नहीं पाता है मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, पिताजी हैं, रिलेटिव्स हैं, क्योंकि उसकी याददाश्त क्या हो गई है? बिल्कुल खत्म या खो गई है एक्सीडेंट के कारण, ठोकर लगने के कारण। तो लेकिन डॉक्टर्स फिर भी बारंबार उसको याद दिलाते हैं, वो पत्नी और बच्चे आदि सामने हैं तो कहते हैं आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ घटनाएं बताते हैं, और धीरे 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 जब वो सुनता है सुनता है सुनता है, तो एक ऐसा समय आता है कि वो क्या होता है, उसे अपनी याददाश्त वापस आती है, और वो अपना पुनः संबंध किसे स्थापित कर पाता है? पत्नी बच्चे आदि से। तो उसी प्रकार से जब जीव भगवान से अलग हो जाता है, अब माया के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया है, माया के साथ, और माया के साथ एक्सीडेंट होने से एक चीज हमारे चेतना पर उसका प्रभाव होता है, और वो क्या है? हम कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। माया का काम क्या है? जब माया के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम भगवान कृष्ण को भूल गए, और भूलने के बाद इस संसार में हमें फेंका गया। जैसे आप चूहे को या बिल्ली को कई बार पकड़ते हैं, बोरे में ऐसे डालते, पकड़ पकड़ के डालते ना बोरे में, बोरे का जो गेट है, मुंह है, वो बंद करते हैं और अंदर तड़पते रहते हैं, चूहे हैं या जो भी प्राणी है। वैसे ही संसार उस बोरे के समान है। जब माया के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ, मतलब हम भगवान को भूले, और भोग करने की हृदय में इतनी बड़ी इच्छा आ गई, पागल हो जाता है ना व्यक्ति भोग करने के लिए, उसको कुछ समझ में नहीं आता, ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति लालायित रहता है उपभोग करने के लिए। वैसे ही जीव भी भगवान से अलग होकर अपना एंजॉय करना चाहता है, तो ऐसे जीव को इस संसार में भेजा जाता है, और फिर वो जीव इस संसार में आकर धड़पता है, प्रयास करता है सुखी होने का या बाहर निकालने का। हाँ, तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के बारे में निरंतर सुनने का प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में हम यहाँ आते ही हैं। आप सब यहाँ क्यों आते हैं बताइए? सुनने के लिए आते हैं, और यहाँ आकर यदि हम सुनने का काम ठीक से नहीं करें तो यहाँ आने का हमारा कोई भी लाभ नहीं है। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तबुतना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। ऐसे बहुत जन्मों तक ऐसा करते रहेंगे, इन अटेंटिव श्रवण कीर्तन आदि, तो कितने जन्म भी बिताएंगे तो भी भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान के प्रति हमारे हृदय में कोई आसक्ति या प्रेम की जो भावना है सेवा की, वो कभी जागृत नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? हर आध्यात्मिक कार्य के प्रति गंभीर होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, वो व्यक्ति सक्सेसफुल है जो व्यक्ति एक समय में एक कार्य करता है। जब के समय क्या करना चाहिए? गव करना चाहिए। जब के समय जब, श्रवण के समय में श्रवण, भगवद गीता को पढ़ते समय भगवद गीता ही पढ़नी चाहिए। तो जब हम ऐसा कार्य करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उससे भगवान के प्रति प्रेम की जो भावना है वो उदित हो जाती है, जन्म लेती है। और जन्माष्टमी का दूसरा अर्थ ये भी है कि वास्तव में एक व्यक्ति को ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि अपने जीवन में या अपने हृदय में कृष्ण का प्राकट्य कराए, अपने हृदय में भगवान प्रकट हो जाने चाहिए। जन्माष्टमी की कई प्रकार की तैयारियां हो सकती हैं। एक होती है बाहरी तैयारी और दूसरी होती है अंतरंग तैयारी, उसको कहते हैं बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग मतलब आपने पंडाल लगा दिए, बहुत सारा बाहरी अरेंजमेंट कर दिया, तो लेकिन दूसरी तैयारी कौन सी है? अपने हृदय की तैयारी, कृष्ण को रिसीव करना। हाँ, अपने हृदय को ऐसा तैयार करना कि कृष्ण दौड़कर आए। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म तो कहां हुआ था? जेल में। आजकल गरीब से गरीब बच्चे का जन्म अच्छे हॉस्पिटल में होता है, लेकिन हमारे जो परम भगवान कृष्ण है उनका प्राकट्य कहां हुआ था? जेल के अंदर, कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे भगवान आते हैं जेल के अंदर हमें जेल से मुक्त करने के लिए, क्योंकि जो मुक्त है वही दूसरों को क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। तो वास्तव में भगवान बाहरी तैयारी पर इतना ध्यान नहीं देते, उसमें कुछ कमी भी रह जाए भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि इस भक्त के हृदय में, इस व्यक्ति के हृदय में मेरी सेवा और प्रीति की, प्रेम की भावना कितनी है, तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भावग्राही जनार्दन। भगवान हमारे सर्विस एटीट्यूड को देखते हैं कि किस भावना से आप आए हो, किस भावना से भगवान की सेवा करना चाहते हो, उसको देखते हैं। अभी शबरी के पास कोई सुविधा नहीं थी, जब भगवान राम उसके पास आने वाले थे, शबरी एक सर्वसाधारण युवती, उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हें मैं सेवा दे रहा हूं वो कंटिन्यू करो, युवा अवस्था में थे, वो बूढ़ी हो गई तब तक भगवान राम का इंतजार कर रहे थे, और इतने सालों तक वो क्या कर रहे थे? भगवान आने वाले हैं आज, हर रोज गोबर लाके आंगन, जो उनके गुरु का आश्रम है, गुरु तो शरीर छोड़ दिए थे, आश्रम का जो आंगन है उसको लेपन करते थे और फ्लावर्स आदि से सजा देते थे, रंगोली बनाते थे, और फिर जाते थे भगवान आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ देना होगा, उनको कुछ ऑफर करना होगा, तो बेर लाने के लिए जाते थे, और बेर भी लाते थे तो पहले क्या करते थे, उसे ना चकती थी और चक्कर एक इसमें रखती थी, क्या कहते उसको, टोकरी में रखती थी कि भगवान आने वाले हैं और उनके लिए क्या होना चाहिए, बेस्ट चीज ऑफर होनी चाहिए। ये वास्तव में उन्नति का लक्षण है। जब हमें ये हृदय में भावना होती है और उस पर हम चलना शुरू करते हैं कि कृष्ण के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं दूंगा अपने अनुसार, उसके पास कुछ नहीं था, बेर भी इतने सारे कहते नहीं, स्वीट बेर दूंगे, अभी कोई मशीन तो है नहीं कौन सा स्वीट है या कौन सा खट्टा है चेक करने के लिए, तो खुद चलते थे। जब भगवान राम आए लक्ष्मण के साथ और वहां जब उसको पता चला शबरी को, तो दौड़ पड़ी, वो बहुत बड़ा कथा है, तो शबरी जब दौड़ी तो देखा भगवान राम, तो इतनी आनंदित हो गई, गदगद हो गई, प्रभु राम को उसने आमंत्रित किया, भगवान आए, उनको बिठाया, आसन आदि दिया और उनके सामने आ गई उनको ऑफरिंग करने के लिए, क्या लाए, बेर। और वैसे ये भी उदाहरण आता है, बताते हैं कि जब टोकरी से वो निकाल रही थी एक एक बेर, पहले चखती थे और जो स्वीट है वो उनको देते थे भगवान को, और खट्टा है तो नीचे डाल देते थे। भगवान राम ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन वहां जो लक्ष्मण खड़े थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था। लक्ष्मण कहते ये क्या है, ये कैसी है, झूठा खिला रही है मेरे प्रभु को, जिनकी सेवा के लिए इतने सालों से मैंने अपना पलक भी नहीं झपकी, कभी बैठा नहीं या कभी सोया नहीं हो, और ऐसे मेरे प्रभु राम को ये झूठा खिला रही है। लेकिन भगवान राम उनको शांत करते हैं और ये स्थापित करते भगवान राम कि उसकी जो सेवा की भावना है ना, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से वैसे देखे हम तो बाहरी रूप का जो अरेंजमेंट है वो फेल है शबरी का, लेकिन उसके हृदय में क्या है, फुल्ली तैयार है भगवान की सेवा करने के लिए। इसी प्रकार से वसुदेव देवकी, वसुदेव देवकी भगवान उन्होंने तो पहले जन्माष्टमी मनाई है, उनके पास कोई सुविधा थी वहां? कुछ नहीं था भगवान के लिए। अंधेरा स्थान, एक दिया जल रहा होगा उस कारागृह में, लेकिन भगवान आकर्षित हो गए, भगवान उस स्थान में प्रकट हो गए। केवल उनके हृदय में जो सेवा की भावना है उसको देखकर भगवान अपने धाम को छोड़ दिए गोलोक वृंदावन को और आकर मथुरा के कारागृह में प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव के लिए। तो इससे देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे हृदय को हमें तैयार करना होगा किसकी सेवा के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। क्योंकि भक्ति ये हृदय का अफेयर है, भक्ति इज द अफेयर ऑफ हार्ट, ऐसे बोलते हैं कि भक्ति किसका अफेयर है, हृदय का। और ये हृदय हमें ऑफर करना है भगवान के चरणों में, क्योंकि हृदय हम जो जिससे हम सर्वाधिक आसक्ति या प्रेम की भावना रखते हैं उसी व्यक्ति को हम अपना क्या करते हैं, हृदय प्रदान करते हैं। तो एक भक्त का मतलब है या उन्नत भक्त का मतलब है या जो उन्नति कर रहा है उसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के अलावा किसी और को स्थान नहीं प्रदान करता, ये लक्षण है। कोई कहेगा कि हमारे तो इतने संबंध है, इतने कामकाज हमें करने पड़ते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, उसीलिए हमें साधु गुरु और शास्त्र से वो कला या वो आर्ट सीखनी होगी कि सारे कार्य करते हुए कैसे हम उनसे अलग होकर भी भगवान को अपना हृदय कैसे अर्पित कर सकते हैं। और वही चीज भगवान भगवद गीता में अर्जुन से डिमांड करते हैं। भगवान कहते हैं मयार्पित मनोबुद्धि, कहते अर्जुन आपका मन बुद्धि मुझे अर्पित करो और आप युद्ध करो, युद्ध करो, लेकिन करते हुए भी आपका हृदय और मन किसके लिए होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय की जो भावना है उसको परखते हैं, निहारते हैं और फिर हमारी ओर अग्रसर होते हैं, या हमारे जीवन में वास्तव में कृष्णा का प्राकट्य होता है या कृष्ण का प्राकट्य हो सकता है। तो उसके लिए हमें भगवान के साथ अपना संबंध दृढ़ बनाने पर कार्य करना होगा, और यही भागवतम या भगवद गीता हमें सिखाती है। प्रभुपाद भी देखो, प्रभुपाद जब अमेरिका गए 70 साल की आयु में, बाहरी रूप से उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, अकेले थे, न्यूयॉर्क की सड़कों में घूम रहे थे। और जब उन्होंने पहली बार विग्रह आदि की स्थापना की तो उनके पास कुछ नहीं था भगवान को उचित रूप से सुविधा देने के लिए। एक छोटा से स्थान में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्थापित किए हैं और उन जिनको सेवा में भी लगाया उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, और उनको कहा कि भगवान को आपको भगवान की सेवा करते रहो और जो आपको अच्छा लगता है वो भगवान को ऑफर करो। तो प्रभुपाद बोल के गए दूसरी जगह प्रचार करने, और थोड़ी देर के बाद बीच में आए वापस तो देखा कि वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जगह वो सुभद्रा और बलराम जी हैं बस अल्टर में, जगन्नाथ वहां से गायब है। प्रभुपाद ने कहा जगन्नाथ कहां चले गए, भक्तों ने कहा हमें जो स्थान अच्छा लगता है ना वहां उनको लेके गए हैं, क्योंकि इन लोगों को सी बीच में घूमना अच्छा लगता था, वो जाके जगन्नाथ जी को सी बीच में रख दिया, अरे अपना टहल रहे हैं, वो ऐसा समझते थे। मतलब ऐसे लोग भी भगवान ने सेवा में लगाए। एक प्रहलादानंद स्वामी है वो बता रहे थे कि वो जब नए नए थे प्रभुपाद ने उनको एक जगह भेज दिया, वहां अभी अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्थापित हुए थे, वो सेवा कर रहे थे लेकिन उनको पता भी नहीं भगवान का नाम क्या है। प्रभुपाद ने जब पत्र लिखा कि कहा सेवा ठीक हो रही है भगवान की, वो कहते मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ उनका नाम भी नहीं पता मुझे, ऐसी स्थिति थी। और जब वो सेवा शुरू की तो एक ने कहा ये अगरबत्ती दीप आदि है ये घुमाना है बस, आरती करना मीन्स क्या घुमाना है, अभी ये नए नए अमेरिकन इनको कुछ ज्ञान नहीं है। जब वो चले गए अकेले थे मंदिर में, तो छोटा सा इससे भी छोटा रूम होगा और भगवान को स्थापित किया था, और आरती करने के लिए उनको बताया था कि अगरबत्ती के बाद दीप और दीप के बाद थोड़े से फूल घुमाते रहना बस, अभी ये बताना भूल गए कि कितना घुमाना है। कई बार होता है ना बस घुमाते रहो वो भूल गए और ये व्यक्ति नया था युवक ना, तो इन्होंने अगरबत्ती जलाई और बस घुमाते रहे। अभी इनको पता नहीं कब तक अगरबत्ती आधा घंटे तक तो घुमा रहे थे। उसके बाद उन्होंने दीप आधा घंटा, तो ऐसी जो आरती है उनका पूरा 2 घंटे आरती चल रही थी, अकेले थे वहां। और बाद में किसी ने उनको बोला ऐसी 6 आरतियां होती है दिन में, उनको पसीने छूट गए क्योंकि 1 आरती को 2 घंटे लगेंगे, तो 6 आरती को कितने घंटे? 12 घंटे। आप सोचो इन एक प्रकार से प्रभुपाद विग्रह की स्थापना भी किए, लेकिन ऐसी बाहरी कोई अरेंजमेंट सुव्यवस्थित नहीं थी। प्रभुपाद ने जब भगवान को विदेशों में स्थापित किया, प्रभुपाद ऐसे प्रार्थना करते थे, हे राधा कृष्ण, हे गौर निताय, आप बहुत अधिक दयालु होकर इस म्लेच्छ देश में आए हो, ऐसे अनक्वालिफाइड लोग आपकी सेवा में हैं, कृपया इनसे जो भी सेवा है आप क्या करो, आनंद से स्वीकार करो। भगवान ने कोई कंप्लेंट नहीं की। जब शुद्ध भक्त बोलता है भगवान को, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये जो जन्माष्टमी की तैयारी है, बाहरी तैयारी, लेकिन आंतरिक तैयारी भी हमें अपने पर्सनल जीवन में क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए बहुत कठोरता से। और तो जब हम अपने आंतरिक रूप से तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा जो संबंध है वो भगवान के साथ स्थापित हो जाएगा, और इतना स्थापित हो जाएगा कि फिर हम कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकते। इसलिए भगवान भागवतम में इसी का विज्ञापन करते हैं। आजकल ये एडवर्टाइज का जमाना है, कुछ भी हो सब चीजों का एड आता है, और हर चीज जबरदस्ती थोपी जाती है व्यक्ति को। शास्त्र का शास्त्र तो नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कोई भी एड आप 12 बार देखते हो तो आपके अंदर इच्छा भी नहीं है खरीदने की, तो आपके अंदर इच्छा क्या होती है, जागृत हो जाती है कि अभी ये चीज जीवन में नींद नहीं होती है। लेकिन एड देखते रहते देखते रहते देखते रहते फिर मनन करते रहते हैं, फिर व्यक्ति कहता नहीं ये इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लाइफ में, इसके बिना दिन जा ही नहीं सकता, जीवित ही नहीं रह सकता, खरीदता रहता है खरीदता रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने साथ संबंध स्थापित करने का विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइज। और भगवान वो किसके माध्यम से सिखाते हैं, जब भगवान वृंदावन में अवतरित होते हैं तो वो एक विशेष लीला से हमें ये शिक्षा प्रदान करते हैं, और वो है एक एक आसुर को मार के। भगवान ने पहला आसुर कौन सा मारा था, पूतना, उसको मार के भगवान ने ये स्थापित कराया कि अरे देखो संबंध स्थापित करना है तो किससे करो, मुझसे करो, और मुझसे थोड़ा भी संबंध स्थापित करते हो तो आपको महान लाभ है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि व्यक्ति थोड़ी भी भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं भक्ति का प्रभाव इतना सामर्थ्यवान है कि व्यक्ति की महान भय से क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। हाँ, तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे भगवान की इस विशेष विशेष लीला का, पूतना लीला। भगवान जब वृंदावन में अवतरित हो जाते हैं, कृष्ण का प्राकट्य हम सब जानते हैं, मथुरा में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में। और जब वो भगवान प्रकट हो गए हैं, ऐसे नहीं कि भगवान गर्भ से बाहर आना होगा और फिर बहुत जैसे आजकल हॉस्पिटल में कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है ऐसी स्थिति हुई होगी, ऐसा नहीं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के हृदय में प्रवेश करते हैं, उनके हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश होते हैं, और उनके हृदय से बाहर साक्षात आगे आके प्रकट हो जाते खड़े हो जाते हैं। और भगवान उस कारागृह में प्रकट हो गए हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा आदि उन्होंने हाथ में धारण किया हुआ था, नाना प्रकार के आभूषण उन्होंने धारण किए थे, वस्त्र आदि पहने थे। तो ऐसे रूप को जब वसुदेव देवकी ने देखा तो वो आश्चर्य व्यक्त करने लगे, बल्कि एक प्रकार से भगवान तो बहुत बड़े रूप में प्रकट हो गए थे, इन्होंने कहा कि आप छोटे हो जाओ, नहीं तो ये कंस आपको देख लेगा, और वो भगवान छोटे बालक हो गए। और फिर इन्होंने उनको प्रार्थना आदि की, और फिर भगवान ने कहा कि आप मुझे लेकर कहाँ चलो, गोकुल वृंदावन में। तो हम सब वो जानते हैं कि वसुदेव उनको लेकर जाते हैं, और वहां ले जाकर भगवान को यशोदा माता ने उस समय कन्या को जन्म दिया था, उनके साथ वहां कृष्ण को छोड़ा जाता है और उस कन्या को लेकर आते वापस, और फिर से एक कारागृह में बंदी की तरह बैठ जाते हैं। और जब सुबह हुई तो ये जो गार्ड्स हैं वो सोए हुए थे रात को घोर निद्रा में, जैसे हम प्रवचन में सोते हैं कभी कभी, हाँ जब भागवत प्रवचन होता है या कुछ, तो हम जगह ढूंढते ऐसा कि जहाँ पूरा पीठ लगा के आराम से कथा सुनी जाए, ऐसे होता है ना हम कभी कभी, तो ये हमारा कंडीशन है। तो वैसे ही ये गार्ड तो बड़े गहरे निद्रा में थे, लेकिन बच्चे की आवाज जैसे सुबह सुनी तो गार्ड जग गए, जग के दौड़ते हुए कंस के पास जाते और उनको बताते हैं कि किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है। कंस तो बेड में लेटा हुआ था, तुरंत उठ जाता है, उठ के चिल्लाता है मेरा काल ने जन्म लिया है। अभी छह को तो उसने मार दिया था, सातवां बलराम के रूप में चले गए थे रोहिणी के घर में, और कृष्ण आठवें प्रकट हो गए थे, लेकिन कृष्ण बहुत चतुर हैं, कृष्ण के साथ कुछ चतुराई दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए हमें। हाँ तो वैसे ही कृष्ण चले गए, और यहाँ जब ये आया दौड़ते हुए ये कंस, तो देवकी क्रंदन करने लगी। देवकी ने कहा अरे भ्राता, तुम्हारा तो वध आठवें पुत्र करने वाला है, वो पुत्र ने जन्म नहीं लिया, किसने जन्म लिया, अभी कन्या है। हाँ तो लेकिन ये सोचता नहीं है, उस कन्या को लेकर भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। वहां एक पत्थर हुआ करता था, जो भी बालक जन्म लेता है उसको मारता था पत्थर के ऊपर, तो वैसे इस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, तो उसके हाथ से वो कन्या आकाश में चली जाती है और दश भुजा वाली देवी दुर्गा के रूप में रूप धारण करती है, क्योंकि भगवान ने कहा था उससे तुम मेरी बहन के रूप में जन्म ग्रहण करो मेरी सेवा के लिए, और जब तुम प्रकट होगी तो तुम्हें कई नामों से जाना जाएगा, और इस संसार के लोग अपनी भौतिक कामनाओं को लेने प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास जाएंगे, नारल फोड़ेंगे, सिंदूर ऑफर करेंगे और अपनी मन्नतें मांगेंगे। भगवान कहते मैं मुझसे ज्यादा लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान वृंदावन में निवास करते हैं, और वह माता यशोदा नंद महाराज आदि बहुत अधिक आनंदित होते हैं, और दूसरे दिन बड़ा उत्सव मनाते हैं। तभी भगवान को कृष्ण को प्रकट होकर 6 दिन हुए थे, तो नंद महाराज को लगा कि क्योंकि जब कंस ने उस बालिका को मारने का प्रयास किया, देखा कि इतनी बड़ी देवी प्रकट हुई, और उसने कहा अरे मूर्ख, तुम्हें मारने वाला जो तुम्हारा काल है वो पहले ही जन्म ले चुका है। अभी वो कांपने लगा, वो जाकर वसुदेव देवकी के चरण पकड़ने लगा, उसने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध या जघन्य कार्य किया है। तो उनको छोड़ देता है कंस, क्षमा याचना करता है उनसे, लेकिन कंस अभी लगता था कि सुधर गया है, उस समय बड़ी अच्छी विद्वता पूर्ण बातें कर रहा था, लेकिन संध्या के समय फिर से अपने जो आसुर लोग थे उनसे वार्तालाप उसने किया, तो उन लोगों ने कहा कि जब बालक ने जन्म ही लिया है ब्रज भूमि वृंदावन के एरिया में, तो हमें एक मुहिम छेड़ देनी चाहिए। और क्या आंदोलन, जितने ये 10 दिन में जितने बच्चे पैदा हुए हैं जन्म लिए हैं उनको मारने का हमें कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कौन एक्सपर्ट है मारने के कार्य में बच्चों को, तो एक नाम सबसे आगे आया, किसका नाम था, पूतना का। पूतना इतनी दक्ष थी, एक्सपर्ट थी, वो प्रसाद के रूप में बच्चों को खाते थे, जैसे प्रसाद खाते ना, उसका रोज एक बच्चा नहीं खाए तो उसको चैन नहीं थी, इसलिए उसका दूसरा नाम था खेचरी। खे मीन्स आकाश, चरी मीन्स विचरण करती है। तो ऐसी पूतना इतनी दक्ष थी, हाँ कंस ने उसको नियुक्त किया, और कंस ने, हाँ क्योंकि कंस भगवान के कौन लगते थे वैसे रिश्ते में, मामा जी। तो जब बच्चा जन्म लेता है भांजा, तो मामा जी क्या खिलौने भेजते हैं ना, तो पहला खिलौना भेजा गया था भगवान के लिए, कौन सा खिलौना था, ये पूतना, लाइव खिलौना। आजकल तो हम हम कहां से ले आते प्लास्टिक के खिलौने, लेकिन अभी ऐसा खिलौना भेजा कंस ने, भगवान इंतजार ही कर रहे थे। मामा की गिफ्ट हर कोई बच्चा वेट करता है, मामा जी कब भेंट मुझे भेजेंगे कुछ गिफ्ट, तो वैसे ही कृष्ण इंतजार ही कर रहे थे। तो जब नंद महाराज को पता चला वसुदेव देव की कारागृह से मुक्त हुए हैं, तो उनको मिलने के लिए नंद महाराज मथुरा में आते हैं, और टैक्स भी उन्हें पे करना था। तो यहाँ केवल ग्वाल और माता यशोदा रोहिणी आदि थे, तो सब लोग बहुत आनंदित थे। और ये पोतना ने सोचा कि मुझे ब्रज में जाना चाहिए, और उनको पता चला कि अभी नंद महाराज के घर में भी किसी बालक ने जन्म लिया है। तो ये पोतना दक्ष थी और एक कार्य करने में, अपना रूप बदलने में क्या करती है, वो इतना राक्षसी उसका रूप था, देखने मात्र से डरते थे लोग, इतना भयावह उसका रूप था। लेकिन जैसे ब्रज में प्रवेश किया तो इतनी सौंदर्यवान हो गई, बल्कि शास्त्र कहते भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते कि जहां भगवान के नामों का कीर्तन होता है वहां भूत प्रेत पिशाचनी ये सबों का अस्तित्व नहीं है, प्रवेश नहीं है, वहां वो आ ही नहीं सकते, उनमें इतना शक्ति या सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे ये पूतना जैसी खेचरी कैसे वहां प्रवेश कर पाई। भागवतम में वर्णन आया है कि इसलिए उसका प्रवेश हुआ क्योंकि भगवान ने अनुमति प्रदान की थी, भगवान एक विशेष लीला घटित करने वाले थे। तो ये जब आई वहां उसने सोचा सब लोग मुझसे भागेंगे, मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगी सरलता से नंद महाराज के महल में, तो एक सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मानो ब्रजवासियों ने जब देखा लग रहा था कि साक्षात वैकुंठपति नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी कमल हाथ में लेकर यहाँ ब्रज के सड़कों में चल रही है। और ऐसी पूतना ने इतनी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था और हाथ में कमल उन्होंने पकड़ा था और वो चल रही थी इतनी सुंदर कि आज तक ऐसे सौंदर्य को किसने देखा नहीं था। ब्रज के जो लोग हैं उसको देखते ही रहते थे। और धीरे 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 वो नंद महाराज के महल में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके उनको देखा माता यशोदा ने, माता यशोदा को लगा अच्छा ये तो शायद अब भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी अब मेरे पुत्र का दर्शन करने आई है या उसको आशीर्वाद देने के लिए आई है। तो ऐसे वो सोच ही रहे थे तो ये पूतना अंदर प्रवेश करती है घर के अंदर, और उस कक्ष में जाती है जहां भगवान लेटे हुए थे, बाल रूप में थे कृष्ण। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण चाहे बालक हो या बड़े हो वह हमेशा क्या रहते हैं, भगवान रहते हैं। चाहे वो माँ यशोदा के गोद में हो या वैसे ही बड़े हो, वो हमेशा भगवान है। इसी कारण से भगवान का नाम अच्युत है। अच्युत का मतलब है किसी भी स्थिति में किसी भी कंडीशन में भगवान अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। भगवान ने अर्जुन के लिए ड्राइव किया, रथ चलाया, लेकिन वो भगवान ही बने रहे। हम किसी के लिए गाड़ी चलाएंगे तो कहेंगे तो ड्राइवर है उनका, यदि वो गाड़ी का मालिक का क्यों ना हो। हाँ तो हम अपने पद से गिर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान का नाम क्या है, अच्युत है। कभी भी अपने स्थिति से वो च्युत नहीं होते, गिरते नहीं है। तो ऐसे भगवान भगवान ही है हमेशा। जब इस ये गई उतना अंदर, और अंदर जैसे देखा भगवान कृष्ण को, तो देखने मात्र से ये समझ गई, वो समझ गई कि ये तो फायर है जो राख से ढकी हुई है। उसने सोचा कि ये तो भयानक कोई ऐसी वस्तु है। हाँ वो समझ गए कि ये मेरा तो काल ही है। हाँ वो अनुभव करने लगी। तो भगवान ने जैसे पूतना वहां आई, भगवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। हाँ तो आचार्य कहते कि बहुत सारे कारण है कृष्ण ने अपनी आंखें ही बंद क्यों की। भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तो ये अर्जुन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में क्या होता हूँ, अलग अलग रूपों में अवतरित होता हूँ। तो भगवान और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तो भगवान सोचने लगे कि मैं तो दुष्टों का आसुरों का विनाश करने के लिए आया हूँ, अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मुझे इस लीला में सबसे पहले किसी आसुर का विनाश करना पड़ रहा है, तो एक स्त्री का। शास्त्र कहते हैं बच्चे, स्त्री, वृद्ध, इनकी हमेशा क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं रक्षा नहीं, उसको मारना पड़ रहा है मुझे, इसलिए भगवान लेटे लेटे अपनी आंखें बंद करते हैं। और दूसरा कारण देते हैं भगवान, कहते सोचते हैं कि मैं इसलिए आंखें बंद कर रहा हूं या भगवान ने आंखें बंद की, भगवान सोचते जब मैं इसको ऐसा एक प्रकार का दंड दूंगा हाँ, तो इसको इतनी पीड़ा होगी, इतना कष्ट होगा कि उसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाएगी। और जिसके लिए भगवान सोच रहे थे कि मैं अपनी आंखें, बच्चों को प्लीज बाहर ले जाइए। तो माता ये जो पोतना है वो भगवान को देख रही थी और ये अनुभव कर रही थी कि ये तो मेरा खाली है, मेरा मृत्यु है। बल्कि ये आई थी भगवान के लिए, खाली हाथ नहीं आई थी। कैसे आई थी? प्रभुपाद जब अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में पहला मंदिर स्थापन किया, तो उस समय प्रभुपाद को पूछा कि हम जब मंदिर आते तो क्या करना चाहिए हमें। प्रभुपाद ने कहा कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, भगवान के लिए कुछ ना कुछ लाना चाहिए, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते चाहे मेरे लिए एक फल लेके आओ, एक पत्र ले आओ, थोड़ा जल लेके आओ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्यों ऐसा कहते भगवान? क्योंकि जब हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं तो उससे हमारा संबंध क्या होता है? स्थापित होता है। यही तो है संबंध स्थापित करने की 6 exchanges है। ददाति प्रति गृणाति, आप किसी के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हो तो रूप गोस्वामी कहते 6 चीजें करनी चाहिए। इवन भक्तों के बीच में ददाति प्रति गृणाति, कोई चीज आप उनको दो और कोई चीज उनसे स्वीकार करो। और दूसरा है भुंजते भोजयते चैव, कि आप कुछ उनको खिलाओ और उनसे भी कुछ खाओ। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं और अपने मन की बातें उनको बताओ और उनसे भी उनकी मन की बातें सुनो। जब ऐसे 6 प्रकार के आदान प्रदान हम करते हैं तो उससे क्या होता है? एक घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ भी है, भगवान के साथ इस प्रकार का आदान प्रदान करते हैं तो भगवान से हमारा जो संबंध है प्रेम का वो स्थापित होता है। आप किसी को मिलने जाते हो किसी के घर, तो आप खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तो वैसे ही है हाँ। तो ऐसे ये जो पूतना है वो बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आए थे, भेंट। और क्या लाया था उसने? वो सोच रहे थे इस बालक को मैं मारूंगी हाँ, दूध पिलाकर अपना स्तनपान कराकर। लेकिन अपने स्तनों के ऊपर उसने कालकूट विष हाँ ऐसा उसका लेपन किया था। इतना भयावह वो जहर था कि उसका स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति मर जाता है, साइनाइड से भी पावरफुल। तो ऐसी वो लेके आई थी ये भावना। तो भगवान ने जब आंखें बंद की तो भगवान सोचे कि देखता हूं इसने कुछ पुण्य कार्य किया है कि नहीं किया, ये आई है मेरे लिए। और देखो कितना बड़ा द्वेष की भावना थी। आप किसी से द्वेष रखते हो तो आप हमेशा अपनी उंगलियां मोड़ते तोड़ते रहते हो, उसका हरि बोल हो जाए, उसका ना कभी भला नहीं होना चाहिए। किसी से आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, तो हमेशा लगता है कि उसका सब कुछ खत्म होना चाहिए, उसके बुरे दिन आने चाहिए, उसको कहते ईर्ष्या। और यहाँ उससे भी अधिक ईर्ष्या थी किसके हृदय में? पुत्रा के। वो तो बिल्कुल मारने के लिए, भगवान को मारना चाहते थे, हत्या करना चाह रहे थे। तो ऐसे पुतना के बारे में जैसे पुतना खड़ी हो गई, भगवान बाल रूप ने आंखें बंद की तो भगवान और एक चीज सोचने लगे। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि देखता हूं इसने कुछ पुण्य आदि किया है कि, भगवान को यह दिखाई दिया, देखा कि ये तो वही है। कौन है? बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला है, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम है विद्यावली। जब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे और बलि महाराज ने जब बड़ा यज्ञ किया था तो भगवान एक बालक बटु ब्रह्मचारी के रूप में गए थे उनके पास, और वह यज्ञ में जाकर उनसे कुछ दान मांगा था। उन्होंने क्या दान मांगा था? 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज कहते हैं, अरे ब्रह्मचारी बालक, हाँ मैं तो बहुत बड़ा कुछ दे सकता हूं, ये तीन पग भूमि और कुछ मांगो ना, और ज्यादा मांगो। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में लालच है, हाँ लालची व्यक्ति को संसार की सारी चीजें दे दो फिर भी वो कमी पड़ती है, जगत का सारा धन उसकी झोली में डाल दो, लालची व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहते नहीं, उतना नहीं चाहिए, मुझे तो तीन पग भूमि चाहिए। अभी उनको पता नहीं ये भगवान बोलते कुछ है और करते कुछ है, भगवान की ये विशेषता है। क्योंकि भगवान जीवन में आएंगे उसका मतलब है आपके जीवन की शांति गायब हो जाएगी। तैयार है आप? भगवान कहते मैंने एक भी श्लोक ऐसा नहीं बोला कि आप मेरी भक्ति करने से शांति प्राप्त कर सकते हो। हाँ आप देखो, कृष्ण वृंदावन में प्रकट होने से पहले बहुत शांत था वृंदावन, सारी गवें आराम से चल रहे थे, सारे ग्वाल आदि सब मौज कर रहे थे, लेकिन जैसे कृष्ण का जन्म हुआ वैसे प्रॉब्लम शुरू हो गए। हाँ देखो, वसुदेव और देवकी के जीवन में भी देखो, अभी अभी शादी हुई थी, अभी शादी के मंडप से बाहर रथ पर बैठे ही थे तो आकाशवाणी हो गई, किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, कि इनके जीवन में कृष्ण आने वाले हैं। वो आकाशवाणी अभी आए भी नहीं थे, आने वाले हैं, तभी उनका जीवन क्या हो गया? अशांति, अशांति भर गई। शास्त्र कहते हैं वही व्यक्ति योग्य है, उसी व्यक्ति को इस मैदान में उतरना चाहिए भक्ति के, जो तैयार है क्या स्वीकार करने के लिए? अशांति, सब प्रकार के दुख सहन करने के लिए, अन्यथा उस व्यक्ति के लिए यहाँ जगह नहीं है। आप कहेंगे तो ये डेंजर है, हम तो भक्ति करते हैं किस लिए? सुख शांति घर आओ, कष्ट मिटे तन का मन का सबका कष्ट मिटे, तो इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते नहीं, मैं वृंदावन में आया तो समस्याएं मेरे साथ आ गई, इसलिए हाँ हम देखते हैं कि जो भक्त हाँ शुरू करता है भक्ति, जब करना शुरू करता है, तिलक लगाना शुरू करता है, माला डालता है, धोती कुर्ता पहनता है, तो पहले कभी कभी वो सोचता है अरे पहले जीवन तो बड़ा शांति का था, अभी तो बड़ा अशांति हो रही है, ये अनर्थात भी है, ये भी है, वो भी है, कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन वास्तव में भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं और वो देखते हैं कि कितनी भावना है मेरी सेवा करने की। तो ऐसे भगवान जब सोच रहे थे, जब वामन देव के रूप में वहां पहुंचे और उनसे तीन पग भूमि मांगी, पहले पग में पूरा पृथ्वी जो आकाश आदि सब नाप लिया, पूरा पृथ्वी आदि नाप लिया, तीसरा स्थान बचा ही नहीं तीसरे पग के लिए। बलि महाराज को कहते तुमने वचन लिया है, हाँ ये पूरा करना होगा। बलि महाराज कहते एक चीज अभी भी है मेरे पास, मैं हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है लेकिन मैं पर्सनली बचा हूँ। उसी को कहते मैं, मीन्स मेरा मिथ्या अहंकार। तो कहते कि मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपका जो तीसरा पग है मेरे सर पर रखिए। बलि महाराज तीसरा पग, बलि महाराज के सर पर वामन देव तीसरा पग रखते हैं, क्योंकि जब वामन देव उस यज्ञशाला में आए थे जहां ये हो रहा था, तब बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली और ये रत्नमाला पुत्री भी वहां थे। ये रत्नमाला ने जब देखा उस बालक को छोटे, उनको देखा कि इतना मनमोहक बालक है, उसको तो मैं दूध पिलाना चाहती हूँ, मेरा ऐसा बालक हो। पहले ऐसी भावना है कि दूध पिलाने की, हाँ सेवा करने की। भगवान हमारी इच्छाओं को क्या करते हैं? लिख के रखते हैं, इसलिए बड़ा गंभीरता से सावधानी से इच्छा करनी चाहिए। हाँ तो फिर जैसे ही देखा, मेरे पिता को पूरा पाताल में भेज दिया उन्होंने, अभी तो इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्टोरी में ट्विस्ट आ गया और इन्होंने उनके सर पर पाव रखा और बेचारे बलि महाराज को पाताल में भेज दिया, त्रिभुवन का राज्य उनसे छीन लिया, बेघर कर दिया और सर्पों के पास से उनको बांध दिया सबके सामने। बलि महाराज ऐसे सर्प के पास से बंधे हुए थे। फिर रत्नमाला को गुस्सा आ गया, उसने कहा ये जो बालक है इसको दूध नहीं क्या पिलाना चाहिए? जहर देके मारना चाहिए इसको, ये ऐसा बालक है। भगवान ने वो भी लिख दिया, ठीक है। इसलिए सारी इच्छाएं भगवान से कनेक्ट कर दो, शुद्ध हो जाएंगे हम और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो भगवान ने उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए ये आ गई थी। किसके रूप में आए थे? पूतना, दोनों चीजें, दूध भी पिलाऊंगे और क्या पिलाऊंगे? जहर भी पिलाऊंगे। तो भगवान ने सोचा आंखें बंद करके, अच्छा ये तो वही है, रत्नमाला है, इसकी तो बड़ी इच्छा थी। तो भगवान फिर जैसे उन्होंने आंखें खोली, फिर देखा इन्होंने उनको उठा लिया, भगवान को बाल कृष्ण को पुत्रा ने उठाया और उसका पहला कार्य था स्तनपान कराना। हाँ, ताकि जैसे ही उनके स्तनों को स्पर्श करेंगे कृष्ण ओठों का, वैसे ही वो मर जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। तो उस समय भगवान ने क्या किया, उसके स्तनों का जैसे अपने ओठों से स्पर्श किया तो जैसे ही चूसा भगवान ने तो उसके प्राण चूस लिए, प्राण निकल आए उसके बाहर। और प्राण जब जाते हैं तो कितना कष्ट होता है, किसको अनुभव है? अभी तक हमारे प्राण नहीं निकले, जब निकलेंगे तो पता चलेगा। इस संसार में हम किसी से प्रेम रखते हैं, वो व्यक्ति दूर हो जाता है तो भी इतना कष्ट का अनुभव करते हैं। हाँ, बच्चे दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब में जाते हैं तो हम कष्ट का अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार से मृत्यु, मतलब श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आया है, 40,000 बिच्छू जब आप एक साथ आपको काटते हैं वो क्या है? वो कष्ट है। किसी को बिच्छू ने काटा है आज तक? नहीं, हाँ मुझे अनुभव है। हाँ, तो बिच्छू काटते तो पूरा शरीर पूरे दिन ऐसी वेदना से जर्जर रहता है, और फिर 40,000 काटे तो फिर सोचो मन। हाँ, तो वैसे ही हाँ इतना कष्ट उसे अनुभव हो रहा था जो, और वो चिल्लाने लगी, पुत्रा कहने लगी छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते हैं मेरा एक फंडा है, हाँ वैसे एक भाषा है ना, कहते हैं कि मैं जिसको पकड़ता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान जिसको पकड़ते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, ये भगवान की विशेषता है। लेकिन भगवान जल्दी भी नहीं पकड़ते, ये भी स्थिति है। या भगवान जल्दी हमारे पकड़ में भी नहीं आते, इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण टेढ़े हैं, बाके बिहारी उनका नाम है। क्या नाम है? बाके शब्द का अर्थ क्या है? टेढ़ा। बिहारी में जो बिहार वाले बिहारी नहीं, पटना वगैरह बिहारी में जो बिहार करते हैं, वृंदावन के अलग अलग कुंजों में वनों में जो विहार करते हैं वो बिहारी हैं। तो ऐसे भगवान टेढ़े हैं, और टेढ़ी वस्तु पहले सीधा अंदर नहीं घुसती है कि नहीं, और टेढ़ी वस्तु अंदर गई तो जल्दी बाहर आ नहीं सकती, बहुत कठिनाई से बाहर आती नहीं, वैसे एक बार अटक गई तो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जब पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति एक कदम मेरी ओर कदम डालता है एक, तो मैं 100 कदम या 1,000 कदम उसकी ओर डालता हूँ। हाँ, तो जन्माष्टमी में भाग लेना मीन्स क्या है? भगवान की ओर एक स्ट्रॉन्ग कदम डालना, उनकी सेवा करना मीन्स एक ऐसा कदम डालना कि कृष्ण वहां से 1,000 कदम आपके लाइफ में डालते हैं, 1,000 कदम आपकी ओर चल के आते हैं। तो ऐसे पूतना ने, पूतना को भगवान ने जब पकड़ा तो वो तो छूटना चाह रहे थे, लेकिन भगवान कहते हैं माता अभी अभी तो तुमने भोग लगाया है। आप घर में भोग लगाते हो भगवान को ना, तो भोग लगाते हो तो थोड़ा रखते हो कि नहीं भगवान के सामने? क्या ऐसा ही नहीं कि रखा और निकाला? कुछ लोग होते घंटी बजाते हैं, एक आंख खुला रखते हैं एक बंद रखते, देखते कि जल्दी खत्म होना चाहिए, जैसे मंत्र खत्म हो गए निकाल लेते हैं प्लेट और खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते कि हे पुतना आपने तो अभी अभी भोग लगाया है, अभी इतना जल्दी क्यों निकाल रही हूँ? अभी तो मुझे ग्रहण करने दो, दूध पीने दो। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान उनसे ये अद्भुत जो सेवा है उसको स्वीकार करते हैं पुतना की। पुतना से ये अमेजिंग जो सेवा है भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान उसकी सेवा से आनंदित हो जाते हैं। इसलिए भागवतम में वर्णन आया है कि वैसे देखा जाए पूतना के पास क्या था भगवान को ऑफर करने के लिए, लेकिन उसका मैं भी बहुत नीच दुष्कर्म था, लेकिन फिर भी वो भगवान को कुछ देने की भावना उसने रखी थी, और इसी कारण से भगवान ने उसको भी क्या कर दिया, स्वीकार किया। हाँ, जैसे सूर्य है वो गंदगी से कभी प्रभावित नहीं होता, गंदगी उसके संपर्क में आती है तो वो गंदगी भी सूर्य के प्रभाव से शुद्ध हो जाती है। हाँ, तो वैसे ही ये जो पूतना वास्तव में इतना अधिक नीच कर्म करने वाली है, हाँ, ऐसी जो पूतना राक्षसी थी वो भी भगवान के संपर्क में आई और वो शुद्ध हो गई, और भगवान ने उसको सबसे बड़ा स्थान दिया। कौन सा स्थान दिया? माँ का स्थान देना। अहो बकियम स्तनकाल कूटम लेभे गतिम धात्रुम, कहते कि उसको धात्री या माता की गति प्राप्त हो गई है, भागवतम में वर्णन आया है। भगवान कहते देखो मेरे साथ संबंध स्थापित करने का ये देखो रिजल्ट, देखो परिणाम, देखो पूतना में, पूतना ने ऐसे संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा उसको इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ। माता यशोदा के साथ कृष्ण की माँ का पदवी दिया भगवान ने वृंदावन में, और भगवान की वो सेवा करने लगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन इसलिए है कि हम अपना जो संबंध है किससे स्थापित करें, भगवान कृष्ण से। और ये जन्माष्टमी सुअवसर है भगवान के साथ संबंध क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो ऐसे भगवान अत्यधिक दयालु है। भगवान सोचते हैं कि इस पूतना ने ईर्ष्या या द्वेष की भावना का जो सीमा है वो लांघ दिया, इससे अधिक मुझसे कौन ईर्ष्या कर सकता है, कौन द्वेष रख सकता है कि मुझे जहर देके मारना चाहे। भगवान कहते उसने सीमा पार कर दिया ना द्वेष का, मैं भी प्रेम और दया की सीमा लांघ दूंगा। और भगवान ने प्रेम और दया की सीमा पार करके उसको अपने माँ का स्थान प्रदान किया है। तो इस संसार में ऐसा उदाहरण हम कभी भी देखते नहीं है। इस संसार में जो संबंध है वो सब स्वार्थ में बंधे हुए हैं। आज आपके पास मित्र आदि घूम रहे हैं क्योंकि आपके पास धन और सुविधा है, वो सब आपके पास कम हो जाए कोई आपके घर में आने वाला नहीं है, कोई आपको फोन करने वाला नहीं है। जब आपसे कुछ लेना होता है तो हजारों फोन आएंगे, और कुछ देना होता है तो सब स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि पंछी भी किसी वृक्ष पर बैठते हैं जब उसके ऊपर क्या होते हैं, फल होते हैं। तो ये सारे जो संबंध हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, या मित्र आदि के संबंध हो, इस संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर क्या है, टिके हुए हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं, वो देखते नहीं है, उनका स्वार्थ हमारा हित है। इसी कारण से भगवान जेल में भी प्रकट होते हैं, हमारे जैसे बद्ध जीवों को इस भौतिक कारागर से मुक्त करने के लिए, क्योंकि हम दुर्ग में हैं, दुर्गा देवी की अध्यक्षता में इस संसारिक जेल में बंद हैं, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि में लिप्त है। तो ऐसा जन्माष्टमी सुअवसर है जिसमें हम कृष्ण से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं सेवा के माध्यम से। किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से। ये ऑफर करने के लिए आ गई पूतना, वैसे ही हमें भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए, शरीर मन वाणी आदि से। जो भी हमारे पास योग्यता है उससे हमें क्या करना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। विदुर की पत्नी जब भगवान आए, उनके घर में कुछ नहीं था, उनके पास दुर्योधन की 56 भोग छोड़ के का किसके घर में पहुंचे, विदुर के घर में, और वहां विदुरानी थे, विदुर बाहर थे, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास तो एक ही चीज थी, क्या, केले पड़े थे घर में। और वो इतना उनके हृदय में प्रेम की भावना विदुरानी के है कि भगवान बैठे आसन पर, और वो बैठ गई और उनको सोचा केला खिलाती हूँ, लेकिन भगवान के मुखारविंद को ऐसे देखती जा रही है, इतने भगवत सेवा में वो निमग्न हो गई कि ऐसे केला, केले छिलका निकाले, केला को फेंक दिया, और कृष्ण के हाथ में क्या दिया, छिलके। आप आपके घर में कोई गेस्ट आए और आते आप कुछ छिलका ऑफर करोगे, एप्पल की सारे सब प्रकार की छिलका है, आज फिर से एप्पल की छिलका, केले की छिलका, सब की छिलका है, तो आप गालियां दोगे उसको और सब जगह मैसेज भेजोगे कि इसने ऐसा ट्रीट किया है मुझे। तो भगवान देखते कि प्रेम इसमें छुपा है। क्या छुपा है? प्रेम, सेवा की भावना है। प्रेम मीन सेवा की भावना। तो भगवान उसको खा रहे खा रहे। विदुर का आगमन हो गया। विदुर ने पहली बार ऐसा ही दृश्य देखा। विदुर को गुस्सा आ गया अपनी पत्नी पर। कैसी पत्नी है, कृष्ण इतने दिनों के बाद आए हैं और उनको छिलकाएं खिलाती जा रही है, केले क्या मेरे लिए रखे? फिर विदुर उसको साइड करते, हो जा साइड में, और भी वर्णन आता है, उसको डांटते मारते पीटते जो भी करते। फिर वो बैठते, अभी कहते मैं सही से करूंगा। अभी ये बहादुर, इन्होंने क्या किया, केले छिलके प्रॉपरली निकाले और केला दे दिया भगवान, वो भी खाने लगे। भगवान की देखो छिलके में जितना आनंद था ना विदुर, तुम्हारे इस केले में आनंद नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में इतनी सेवा की और प्रेम की भावना थी। तो वैसे ही भक्ति मतलब हाँ प्रेममयी सेवा। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में किया डिवोशनल सर्विस। हाँ, तो ये जन्माष्टमी भगवान हमें शांति तो नहीं दे सकते, जैसे हमने सुना भगवान शांति दे सकते जीवन में नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं मैं शांति देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ सेवा देने के लिए। क्या देने के लिए? सेवा। और सेवा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो इसलिए सर्वस्व या सार है जन्माष्टमी का कि हम एन के न प्रकार मन कृष्ण निवेश, भगवान में अपना मन लगाए सेवा के माध्यम से, और ऐसी सेवा करें। हाँ, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के गुरु महाराज कहा करते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। हाँ, लोग कहते ना अपनी आंखों से जाके देखते हैं, भीड़ लगी रहती है भगवान को देखने के लिए। हाँ, तो कहते भगवान इस चमड़े के आंखों के योग्यता नहीं है भगवान को देखने के लिए, लेकिन एक कार्य करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाए, ऐसा कहा करते थे। प्रभुपाद ने जैसे सेवा की, सोचो 70 साल की आयु में, हाँ, भगवान की ऐसी सेवा की कि भगवान प्रकट हो गए हर व्यक्ति के घर घर में, हृदय में, सब नगर आदि ग्राम में। हाँ, ये उनकी विशेषता है। तो इस प्रकार से सेवा ऐसी भगवान की करने का प्रयास करना चाहिए हमें कि जिसके द्वारा वास्तव में भगवान का प्राकट्य हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हो। और सेवा की शुरुआत होती है सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः। सेवा की शुरुआत होती है भगवान के नामों का उच्चारण जीवा से करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए जन्माष्टमी में कि उसके पास कृष्ण के लिए करने के लिए कुछ ना हो। कृष्ण पूछेंगे आपको, मेरा बर्थडे आया और तुमने कुछ सेवा नहीं की। ये सर्वसाधारण किसी का बर्थडे होता है तो हम कितना लगे रहते हैं, बल्कि भगवान का जन्मदिन मनाने से हमारा जो जन्मदिन है उसके प्रति हमारी अनासक्ति होती है। हमें उत्साहित होना चाहिए भगवान का जन्मदिन मनाने में। हाँ, तो ये शरीर के प्रति जो प्रेम है ना वो कम हो जाता है, फिर भगवान के प्रति सेवा और प्रेम की भावना हमारी बढ़ती है। तो ये अच्छा सुअवसर है भगवान की कृपा से और विशेष रूप से श्री प्रभुपाद की कृपा से। तो आप जन्माष्टमी उत्सव में भाग लीजिए और अपना जो जीवन है, किसको पता अगला जन्माष्टमी हमारे जीवन में है या नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं जीवन में दो चीजों का स्मरण करो हमेशा, मृत्यु और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नामों को सदैव अपने आंखों के सामने रखो, जीवा पर रखो और सदैव मृत्यु को सामने रखो, तो फिर आप कभी भी इनअटेंटिव नहीं होंगे लाइफ में, कभी भी ढीले नहीं होंगे, कभी भी असावधान नहीं होंगे, हमेशा उत्साहित बने रहेंगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। और भगवान की सेवा जोश और बड़े उन्माद और तन्मयता के साथ करने के लिए। तो आप सबका धन्यवाद, जो भी आज पहले आए हैं इस कार्यक्रम में उनका भी धन्यवाद है, आए और भगवत चर्चा को आप सबने गंभीरता से और एकाग्रता से सुना। हरे कृष्णा
हरे
कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे
हरे कृष्ण महामंत्र के जन्माष्टमी महामहोत्सव के नाम संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद के हिताय गौर प्रेमानंदे।